من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ومن خفت موازينه اور جن کے نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے جن کے نیکیوں کے پلے جو ہیں وہ ہلکے ہوں گے یعنی برائیوں کے پلے بھاری ہوں گے یہی لوگ ہے یہی وہ لوگ ہے الذین وہ لوگ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور تلفح وجوہم النار آگ ان کے چہرے کو جلا دے گی اور وہ دوزخ میں بری شکل میں پڑے رہیں گے الم تکن آیاتی ان سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے فرشتے پوچھیں گے یا اللہ پوچھیں گے کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی دنیا میں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تھا پھر بھی تم نے زندگی نہیں بدلی فکن تم بہا تکذبون لیکن تم لوگ اس کو جھٹلاتے تھے قرآن کو صحیح نہیں مانتے قالو وہ لوگ کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا ہماری کمبختی ہم پر غالب آ گئی ہماری کمبختی ہم پر چڑھ گئی وکنا قوما ضالین ہم گمراہ ہو گئے ربنا اخرجنا منہا مالک ہمارے یعنی ہم کو اب کی بار دوزخ سے نکال دے فَإِنْ عُدْنَا پھر اگر ہم ایسا کرے تو ہم قصوروار ہے ہم سدھر جائیں گے قال اللہ کہے گا اکسعو فیہا پڑے رہو جہنم میں دور ہو جاؤ مجھ سے ولا تکلمن مجھ سے بات نہ کرو انہو کان فریقم من عبادی ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگ دنیا میں یوں دعا کرتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا آمنا فاغفر لنا ہمارے رب ہم تو ایمان لائے ہیں ہماری مغفرت کر دے ورحمنا ہم پر رحم کر دے وانت خیر الراحمین تو بہترین رحم کرنے والا ہے چلو پہلے اتنا ہی سمجھ لیتے آیت نمبر 103 سے میں نے شروع کیا اب اس میں حساب قیامت کے دن میزان میں ہماری نیکیاں اور ہماری برائیاں تولی جائے گی موازین میں میزان میں اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم ہوگا کوئی شک نہیں اب میزان میں وہ اعمال بھاری ہوں گے جو اخلاص والے ہوں گے کوئی بھی عمل اخلاص والا ہوگا تو وہ بھاری ہوگا میزان میں اسی لیے حدیث میں آتا ہے مسند بزار کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مومنین کے اعمال अल्लाह के सामने आएंगे और उस पर मोहर लगी होगी। मोहर को कैसे, हमारे यहाँ पार्सल आते हैं कैसे बंद होते हैं, पार्सल होते हैं बंद होते हैं ना, खुला हुआ नहीं होता है, ऐसे आमाल एक थैली में यानी एक मोहर लगे हुए होंगे, अल्लाह के सामने आएंगे। यानी फरिश्ते जो ये लिख रहे हैं ना, ये इसकी मोहर लगा देते हैं कि ये आमाल, ये नमाज, ये रोज़ा है, ये ज़कात। अल्लाह ताला उस सब आमाल को देखेंगे का इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको फेंक दो और इसको तराजू में रख दो। अल्लाह ताला क्या कहेंगे, इसको फेंक दो, तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये सब ने किया है। फरिश्ते क्या कहेंगे, ये सब क्या है, नेकियां है। अल्लाह फरमाएंगे कि मैं जानता हूं ये नेकियां उसने किसको दिखाने के लिए किए हैं। फरिश्तों को पता नहीं है, फरिश्तों तो नेकियां लिखेंगे, लेकिन उसका वैल्यू इखलास वाला अल्लाह ही जानता है, सिर्फ अल्लाह को पता है, फरिश्तों को भी नहीं। तो उस हैवी वाले को फिर तोला जाएगा, बाकी जिसमें अंदर शो ऑफ है, रियाकारी, उसको तो फेंक दिया जाएगा। ये मुस्तनद बज़ार की हदीस है, सही हदीस है। इसीलिए हजरत सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कयामत के दिन जो जाहिल लोग थे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वो अपने बूटों को उठाकर आएंगे, आइडल्स को, बूटों को उठाकर, देखो ना, कैरी द आइडल्स, और अल्लाह के सामने आएंगे। सो वो अल्लाह से क्या कहेंगे, अल्लाह तुमने हमारी तरफ रसूल नहीं भेजा। वो जमाना जो था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आपने रसूल नहीं भेजा, आपने हमारी तरफ कोई हुक्म नहीं भेजा। never send any commands, never send any रसूल नहीं भेजा। अगर तुम रसूल भेजते, हुक्म भेजते, तो हम ऐसा ना करते। इब्न मुस्तनद बज़ार की हदीस है, ऐसा ना करते तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ठीक है, तुम मेरी बात, आज मेरा हुक्म मानोगे, चलो उस वक्त हुक्म नहीं आया, अभी आज मैं तुम्हें हुक्म दूं तो मानोगे? वो कहेंगे हाँ मानेंगे, आज तो मान लेंगे, दुनिया में तो तुमने नहीं कहा, आज मान लेंगे। फरमाया कसमें खाओ, हदीस में आता है वो कसमें भी खाएंगे, अल्लाह की कसम खाएंगे, हम मानते। अल्लाह फरमाएंगे जाओ जहन्नम में कूद जाओ, जहन्नम है ना, उसमें कूदो। वो जाएंगे, आग को देखेंगे, डर जाएंगे, वापस भाग कर आएंगे, अल्लाह हम डरते हैं, इसमें नहीं कूद सकते। फरमाया देखा, तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, अब हमेशा के लिए जहन्नम में जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पर क्या फरमाते, अगर ये कूद जाते, अल्लाह का हुक्म वहां भी मान लेते, चलो दुनिया में तो कोई नहीं आया, वहां मान लेते, तो ये आग उनके लिए सलामती वाली बन जाती है, सलामती वाली बन जाती। इसलिए हदीस में आता है जुल्म की तीन किस्में हैं। एक जुल्म जिसको कहते हैं इन शिर्क लजुल्म अज़ीम, शिर्क जो है ना बहुत बड़ा जुल्म, अल्लाह ताला खुद कह रहा है कुरान में कि एक शिर्क वो है कि जिसमें इंसान ने शिर्क किया, अल्लाह की जात के साथ किसी को क्या किया है, शरीक किया। दूसरा जुल्म गुनाह किया, गुनाह किया। और तीसरा जुल्म वो उसने मखलूक के हकूक को पूरा नहीं किया। पहला जुल्म जो है वो अल्लाह माफ नहीं करेगा, शिर्क, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका, ये बगैर तोबा के मरा जहन्नम में फॉरएवर जाएगा। इफ अ पर्सन कमिट, इफ अ पर्सन स्क्राइब पार्टनर विद अल्लाह, फॉरएवर हैव टू एंटर इन जहन्नम। दूसरा अल्लाह का गुनाह है वो अल्लाह क्या कर देगा, माफ, लेकिन तीसरा गुना जो है जिसके अंदर में क्या है कि इंसान अल्लाह बंदों के हुकूक पूरा करके नहीं आया है, तो पहले क्या करे? उस हक को पूरा, कयामत में उसकी नेकियों में से उसको सब नेकियां तकसीम हो जाएंगी। हाँ, अगर कोई उसके बाद नेकी रह गई तो जन्नत में जाएगा, नहीं रही तो फिर सबके गुना लेकर जन्नत में जाएगा। वो हदीस तो जब हम पढ़ते हैं तिरमिज़ी शरीफ में तो बाल खड़े हो जाते हैं। पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर आएगा, पहाड़ों के बराबर, एक पहाड़ नहीं, पहाड़ों के बराबर। उम्रे हज सदकात क्या और क्या लेकर आएगा, रोजे जकात। लेकिन उसके पास मांगने वाले बहुत होंगे। लाओ लाओ, सब नेकियां खत्म, अभी भी लोग क्यू में खड़े हैं बाकी अब तो नेकियां खत्म हो गई, तो उनके गुनाह इसके सर पर डाले जाएंगे। ये है मुफलिस, जिसको नबी शासन पूछते साहबा को, मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? तो उन्होंने कहा जिसके पास पैसे नहीं। कहा नहीं, ये आदमी जो खूब नेकियां लेकर आए, खूब पर नेकियां लेकर, लेकिन दूसरों के हुकूक अदा नहीं किए हैं, तो उसकी नेकियां वहां तो थोड़े पैसे दे, पाउंड थोड़े देने, डॉलर देने, दिरहम देने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वहां तो क्या देना है, नेकियां। वन पैनी किसी के लिए है तो 700 मकबूल नमाज, एक पैनी 700 मकबूल नमाज। वो मेरी बात नहीं समझे, अब तो क्या हो, सारी खत्म, अभी भी लोग खड़े हैं, तो उसके गुना लेकर इसके सर पर डाले जाएंगे, उसके गुना खत्म, वो सब जन्नत में जाएंगे, और ये सबके गुना लेकर कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को खत्म खिताब करके कहा, ये मुफलिस है, लाया बहुत कुछ और वहां गरीब हो गया। He brought so much neki and he became poor. He gave his neki to other people that who him did not fulfill the rights. उनको नहीं दिया तो सब खत्म, अब ये जन्नत में जाए सबके गुना लेकर, वो सब जन्नत में चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे किराम को कहा ये मुफलिस है। सही हदीस सुना रहे, सही हदीस। इसलिए इंसान के कयामत के दिन जो रजिस्टर होंगे ना, रजिस्टर बुक ऑफ डीड्स, वो तीन किस्म के होंगे। एक तो नेकियों का रजिस्टर होगा, जिसमें नेकियां 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 नेकियां, अल्लाह भी रहीम, अजीब, ये भी मुस्तनद बजार की हदीस है। दूसरा जो है वो गुनाहों का रजिस्टर है, बहुत बड़ा। और तीसरा जो है जिसमें अल्लाह की नेमत लिखी हुई है, मैंने तुझे पैदाइश से लेकर मरने तक क्या क्या दिया, मेरी समझ बात सुन, क्या क्या दिया, क्या क्या हमने खाया, क्या क्या पिया, कैसी नेमतें इस्तेमाल की है, सारी नेकियां हैं, सारे गुनाह हैं, और जितनी नेमत है अल्लाह उन नेमत से बात करेंगे, से एक छोटी नेमत लेंगे, जा इन नेकियों में से तेरा जो बदला है वो ले ले, नेमत का जो बदला है ना वो इन नेकियों में से ले ले। हदीस है। अब वो नेमत छोटी वाली जाएगी और उन नेकियों में से अपना बदला ले लेगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसकी तो नेकियां ही खत्म हो गई, अभी भी वो नेमत कह रही है मेरी कि अभी तो मेरा और बाकी है, जैसे सांस है, हमने कितने साल इस्तेमाल किया सांस, पैदा होने से लेकर मरते दम तक, चलो एक नेमत को ले लो, सारी नेमत को नहीं है? उसकी सारी नेकियां ले लेंगी, एक नेमत अभी तो बाकी है, लाइन में खड़ी है कि अभी तो मेरी मेरा ही बदला नहीं हुआ, दूसरी नेमत का क्या होगा, वो तो बाद में। अब इंसान के पास क्या रह गया, नेमतें अभी बाकी है, गुना रह गए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे ओ मेरे बंदे, तेरी जितना जितनी नेकियां थी ना उसका दुगना और चुगना मैं तुझे नेकियां दे देता हूं, तेरे गुनाह को माफ कर देता हूं कि तूने कुछ नेकियां की थी, इसलिए जा मैं तुझे जन्नत के अंदर भेज देता हूं। ये रिवायत मुस्तनद बजार में है, जो मैंने कहा तीन रजिस्टर के बारे में, एक नेकी का, एक गुनाह का, और नेमत का। एक आदमी नेमत कोई बदला ले नहीं सकता अल्लाह के। ये ना आंख जो है, वी यूज द आई साइड फ्रॉम द डे वी बोर्न अंटिल वी डाई, उसका ही बदला नहीं दे सकता। दूसरी नियामत तो कहा देगा, वो सांस का बदला नहीं दे सकता, कान का बदला नहीं दे सकता। हर नियामत को गिनो ना, कितनी नियामत है अल्लाह की, अंदर खाना जाता है, डाइजेस्ट ही हो जाता है, वो कितनी बड़ी नेमत है। फिर वो निकल जाता है अलग रास्ते से, फिर खून बनता है, पेशाब, ये कितनी बड़ी नेमत है। बहुत सारी नेमत है, एक नेमत में हजार नेमत है, एक नेमत में हजार नेमत है। लेकिन अल्लाह करीम है, फरमाया चलो मैंने तेरी नेकियों के खाली बतलाने के लिए कि मेरी नेमतें कितनी वैल्यूबल थी, तूने मेरी नेमत की कदर नहीं की। इसलिए तो यहां मन खफत मवाजीन इस हदीस, इस आयत में यहां से चार काफिर की चार सिफत बयान करते हैं, जिसके या जो गुनहगार की, फासिक की, जिनका ये पल रहा है झुक जाएगा, ऐसे झुकेगा, नेकियों का कम हो गया और गुनाह का भर गया। तो अल्लाह क्या कहते हैं, हमेशा जहन्नम में रहेगा अगर ईमान वाला नहीं है तो। और अगर यहां तो जाहिर बात है काफिर तो जाएगा ही जन्म में, नहीं बात, हमेशा से मुराद जहां तक अल्लाह चाहेंगे अगर मोमिन है तो उसको जन्म में रखा जाएगा। अब मुफस्सिरीन यहां एक बहुत अच्छी बात बयान फरमाते हैं कि यहां उसकी कब्र में उसको एवरी डे रोजाना फरिश्ते आकर बतलाएंगे, इधर की खिड़की खुल ली है, इधर की खिड़की खुल ली है, ये जन्नत तेरे लिए थी, ये जन्नत तेरे लिए थी, लेकिन तूने अल्लाह की बात नहीं मानी तो तेरी ये जगह जहन्नम की है। तो रोजाना उसको बतलाया जाएगा कयामत तक, फिर कयामत उठेगा तब की बात तब है, यानी उसको रोजाना कब्र में यह बतलाया जाएगा कि तेरी जन्नत में यह जगह थी लेकिन तूने अल्लाह को राजी नहीं किया, अब तेरी जगह किसी और को मिल गई, यह तेरी जगह है। और अगर नेक मोमिन साले हैं तो उसको कहेंगे यह तेरी जगह थी जहन्नम में लेकिन तूने नेक साले अमाल किए, अब तेरी जगह जन्नत में यह है। ये सही हदीस है, कब्र की बात कर रहा हूं मैं, कयामत की नहीं। एक तो यह अल्लाह हम सबको कब्र में भी आसानी फरमा दे। देखो क्या कह रहे हैं, तल्फ वुजूहहुमुन नार वहुम फिया कालिहून। काले के बारे में हाशिए में लिखा है, काले उस शख्स को कहते हैं जिसकी चमड़ी निकल गई हो, जिसकी चमड़ी क्या निकल, खाली उसकी हड्डी नजर आती हो। यहां अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा काले का क्या मतलब है, तो उन्होंने फरमा अलम तर इलर रासिल मुशीत, मुशीत तुमने जलाई हुई बकरे की सीढ़ी नहीं देखी। बकरे की सीढ़ी होती है ना, उसको जला दी जाती है एकदम तो काली काली हो जाती है, इसकी शक्ल ही बदल जाती है। लेकिन यहां पर हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि काले का मतलब उनका चेहरा अल्लाह जहन्नम में जलाएगा तो ऊपर का होंठ जो है ना ये यहां तक आधी पेशानी तक चला जाएगा और नीचे का होंठ जो है वो नाफ तक चला जाएगा और सिर्फ दांत नजर आएंगे, यू कैन सी ओनली द टीथ। ये इसकी तफसीर अल्लाह के नबी ने खुद फरमाई है और फरमाया लहुम फीहा ज़फीरु व शहीक, वो गधे की तरह डोंकी की तरह कब्र में और कयामत के दिन या जहन्नम में चिल्लाएंगे, वहुम जिस तरीखून फिया, गधे जैसी आवाज करेंगे और चिल्लाएंगे, यस तरीखून फिया, इस तराक का माना चिल्लाना, स्क्रीम करना। ये तफसीर तल्फहू की यहां हाशिए में भी कुछ है और मुफस्सिरीन ने भी इसको बयान किया है। क्या कह रहे हैं, तल्फहू वुजूहहुमुन नार वहुम फीहा कालिहून अलम तकुन आयाती। अल्लाह ताला उनको कहेंगे, अब अल्लाह से बात हो रही है जहन्नमियों के साथ, अल्लाह जहन्नमियों से बात कर रहे हैं कि वो कहेंगे कि हमें भेज दे दुनिया में, तो कहेंगे क्या तुमको मेरी कुरान कि तिलावत नहीं किया गया, कुरान नहीं पढ़ा गया तुम्हारे सामने, अल्लाह के नबी ने, साहबा ने, ताबीन, तबे ताबीन, आज तेरे कुरान तो पढ़ा जाता है ना, कुरान समझाया जाता है कि कुरान क्या कहता है। That's why we say to sit in the Quran tafsir to understand. तुम्हें कुरान समझाया गया लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना, तुम्हारे सामने अहकाम बयान किए गए, नमाज, रोजा, जकात, मेरी कुदरत के दलाइल और प्रूफ जितने हैं बतलाए गए, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी। तुम ये समझते थे कि कयामत आने वाली नहीं है। सूरे अनाम में तो है, अल्लाह पाक ने क्या कहा है, वो लोग कसमें खाएंगे, कसम खाएंगे, हाँ अल्लाह की कसम हमने ये सब गलत किया है, अल्लाह की कसम हम अजाब के मुस्तहिक है, हमें अजाब दे, इतना इकरार करेंगे। जैसे मुजरिम होता है, कोई क्राइम करता है, पकड़ा जाता है तो पहले इनकार करता है, लेकिन उसके सामने सीसीटीवी फुटेज बदलाया जाता है तो वो चौंक जाता है, तो अब वो कहता है यार हाँ मैं तो अजाब का लायक हूं, मैंने ये काम किया है, मैंने ये क्राइम किया है। कयामत में अल्लाह ताला कसमें खिलाएगा, सूरतुल अनाम में कसमें खाकर वो कहेंगे कि हाँ हमने ये काम किया है, काश के हम इस बात को मान लेते हम अल्लाह। लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं, फकुन तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, तुमने मेरी बात को झुटलाया ना, नहीं माना। कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, वो खुद कहेंगे हम पर हमारी बदबख्ती, मिस्चिफनेस, गुनाह हम पर गालिब आ गया, और हम क्या है, गुमराह। गुमराह का क्या माना है, हम ही जहन्नम में पहुंच गए, हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, हमने नहीं माना, न उलमा की बात, न अजान, न फुला, किसी को नहीं माना, बल्कि हम उसको झुटलाते थे। क्या कहते थे पहले, आज भी मुस्लिम कंट्री में जाकर देखो कि रजम करना, इस्लामिक कंट्री में अगर कोई शादीशुदा मर्द औरत जीना करे तो उसको रजम किया जाता है। अब तो रजम का जमाना खत्म हो गया, यानी उसको एक कुएं में ऐसा छोटा सा कुआं बनाकर उसको खड़ा किया जाता है। हमने देखी है जिद्दा में, वो जगह है जिद्दा की जामे मस्जिद के बाहर, एक बड़ा मैदान है। अब तो कुआं जैसा नहीं, अल्लाह के नबी सर जमाने में तो ऐसे कुआं जैसा होता, छोटा सा कुआं होता है, उसमें उसको खड़ा करते थे और चारों तरफ से सहाबा पत्थर मारकर उसको खत्म कर देते थे। क्यों, कुरान का हुक्म है और अल्लाह ने कहा इस पर रहम नहीं किया जाएगा, जो रहम करेगा वो भी गुनहगार होगा। तो उसका भी इनकार कर दिया कि इस्लाम में तो ये संसार करते हैं, फिर अगर चोरी करे तो हाथ काटते हैं वो सारी को। ये तो जहां इस्लामिक कंट्री हो, हर कंट्री में नहीं, जहां इस्लामिक कंट्री हो, जैसे वो सारी को तो फक्त कुरान ने कहा। अब कहते हैं जीना के ऊपर चार गवाह लाना चाहिए, आंखों से देखे और चार गवाह होने चाहिए। अब कहते चार गवाह की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने भी कह दिया बस मार दो उसको। ये सब गलत है, कुरान के इनकार तुम करते रहे, कुरान को रिजेक्ट करते रहे, तुम उसका मजाक करते रहे। क्या कह रहे हैं अल्लाह तबारक वताला, वो खुद कहेंगे ए अल्लाह हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई, अब क्या कर ले, रब्बना अखरिजना, ए अल्लाह हमें क्या कर, निकाल दे जहन्नम से, दुनिया में भेज दे, हम बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, नेक अमल करेंगे, अगर दोबारा गुनाह करें तो फिर हम जालिम है, नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे। इसलिए बाज मर्तबा ईमान बिल गैब भी बहुत जरूरी है, यानी तफसील में नहीं, जैसे हदीस में आता है कयामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे फरिश्तों से, इस आदमी के तकदीर को देखो कि इसने तकदीर के बारे में कोई आर्ग्यूमेंट किया है, والقدر خيره وشره من الله تعالى, तकदीर के बारे में, what's going to happen for my life, इसने he did any arguments about तकदीर, तो फरिश्ते उठ के बुकब्दीद देखेंगे, फरमाया हाँ ये तकदीर के बारे में बहुत ही आर्ग्यूमेंट करता था, ये सही है गलत है, सही कहा, उसको लाओ मेरे सामने, मैं आज उसके साथ आर्ग्यूमेंट करूंगा। और जब अल्लाह ताला करेगा तो फिर कहां जाएगा, जन्नत में जाएगा। दूसरे के बारे में पूछा जाएगा, इसका देखो कहने इसने कुछ नहीं किया, इसने अल्लाह तेरी बात को जू के तू मान लिया कि जो कुछ अल्लाह ने कहा सच है, उसमें कोई डाउट नहीं, फरमाया छोड़ दो उसको, जन्नत में नहीं जन्नत में भेज दो। तो ये जो है कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतना व कुन्ना कौमन दालीन रब्बना अखरिजना मिनहा फइन उदना फइन्ना जालिमून। देखा या मालिक, जब जहन्नम में चले जाएंगे ना तो ये बात करेंगे, बात करेंगे किससे बात करेंगे, अल्लाह से बात करेंगे, फरिश्ते से बात करेंगे, जो जहन्नम के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना उससे बात करेंगे। ये अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है। आप तफसीर इब्न अब्बास को उठाओ, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह की तफसीर बहुत अच्छी है। उसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो रईस उल मुफस्सिर थे वो फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, दोज़खी दुआ करेंगे 1000 साल के बाद उसकी एक दुआ सुनी जाएगी, जितनी बार 1000 साल के बाद, फिर अल्लाह उसको क्या है जवाब देगा, 1000 साल के बाद उसको जवाब देगा अल्लाह तबारक व ताला। इसी तरह 6000 साल में उनकी 6 दुआ होगी और 6000 साल, और कौन सा 6000, दुनिया का नहीं, 50,000 सना वहां का एक दिन दुनिया के 50,000 ईयर्स के बराबर होगा। अंदाजा करो जहन्नम कैसी खतरनाक होगी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया 1000 साल के बाद सबसे पहले वो कहेंगे, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसु रूसिहिम रब्बना अबसरना व समिना, अल्लाह हमने देख लिया जहन्नम को, अल्लाह हमने सुन लिया यहां की आवाज और अजाब को, फरजीना भेज दे दुनिया में, नामल सालेहा हम नेक अमल कर लेंगे, इन्ना मुकिनून हम ईमान ले आएंगे, यकीन करेंगे, सूरे सजदा की आयत नंबर 12 पे है ये कहेंगे, तो अल्लाह उनके जवाब में उस वक्त कहेगा, वलौ शिना लातैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौल मिन कबली लाम लअन्न हक्कल कौल मिन्नी लाम लअन्न जहन्नमा मिनल जिन्नती वन्नासी अजमाइन, मेरी बात आज गालिब आ गई कि मैं जहन्नम को इंसानों और जिन्नात से भर दूंगा। मैं आज तुम्हारी बात नहीं समझे, जहन्नम में पड़े रहो। फिर 1000 साल के बाद फिर कहेंगे, फअतरफना बिदुनूबिना फहल मिन फहल इला खुरूज मिन सबील, सूरह मोमिन की आयत नंबर 11 है, फहल इला, ए अल्लाह कोई निकलने का रास्ता है, देर इज एनी सोल्यूशन टू वी कैन कम आउट फ्रॉम जहन्नम, कोई सोल्यूशन है, कोई है रास्ता। वो 1000 साल, अब ये दूसरा 1000 साल हो गया, तब जाकर अल्लाह ताला उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, नहीं नहीं ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुई अल्लाह वहदहु वकफरतुम व अन युशरक बिही तुमिनु, तुमको जब बुलाया गया एक अल्लाह को मानो तो तुमने शिर्क किया, तुमने कुफ्र किया, फल हुक्म लिल्लाहिल अलील कबीर, आज हुक्म अल्लाह का होगा, अंदर पड़े रहो, जवाब दिया जाए, कुछ भी नहीं ये मैं मेरी जेब की बात नहीं सुना रहा, ये इब्ने अब्बास की तफसीर कुरान के अंदर की आयतों से समझा रहा हूं मैं, अपनी तरफ से मैं कोई बात नहीं बयान करूंगा, मैं कुरान समझा रहा हूं आपको कि अल्लाह, तीसरी बात देखिए, 3000 साल के बाद फिर कहेंगे वनादौ, अब किससे बात कर रहे हैं, वो फरिश्ते जो वहां खड़े हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड जिसको कहते हैं, जहन्नम के दरवाजों पर दारोगा जिसको मालिक कहा जाता है, वनादौ या मालिक लियक्दी अलैना रब क़ाल इन्नकुम माकिथून, फैसला कर दो यार, अब तो जीना नहीं, बस मर जाए, फना हो जाए, खत्म, सही अल्लाह तबारक व तआला, किल दस, डिस्ट्रॉय अस, वी डोंट वांट टू लिव लाइफ इन जहन्नम। तो फरिश्ते क्या कहेंगे, इन्नकुम माकिसून, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, स्टे इन जहन्नम, स्टे इन जहन्नम। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, जो गैर मुस्लिम भी अल्लाह उनको भी ईमान की दौलत से नवाजे, वो भी जन्नती बन जाए, सब अल्लाह सबसे अल्लाह राजी हो जाए। हाँ, फिर 1000 साल की तो सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत है, फिर उसके बाद फिर दुआ करेंगे, वंदिरी नास यौम यातीहिमुल अज़ाब फयकूलुल लदीना ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन करीब नुजीब दावतक व नत्तबिउर रुसुल। अल्लाह, कुछ तो डिले कर दो अजाब को, डिले कर दो, अभी छोड़ दो हमें, बाद में देना, अभी डिले कर दो। अल्लाह अल्लाह क्या कहेंगे, अवलम तकून अक्समतुम मिन कब्ल मालकुम मिन सवाल, दुनिया में तुमको कहा जाता था भाई देखो मरना है और मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, तो तुम लोग कसम खाते थे, अल्लाह की कसम हमें मरना नहीं है, बस मर के मर गए, दोबारा जिंदा होना ही नहीं है। आज जिंदा हो गए ना, अब क्या होगा तुम्हारा बताओ, पड़े रहो जन्नत में पड़े रहो। उसके बाद अब आखिरी दुआ है, अल्लाह बल्कि एक दुआ और है, रब्बना सूरह फातिर की दुआ, सूरह फातिर में आयत नंबर 37 है, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैर अल्लज़ी कुन्ना नामल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर, जुमा में मैंने आयत पढ़ी थी ये, अल्लाह कहेंगे क्या मैंने तुमको 60 इयर्स की उम्र नहीं दी थी सोचने के लिए, 60 इयर्स आई गेव यू टू थिंक अबाउट इट, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाकुम नज़ीर, ओके चलो तुमने 60 इयर्स में चेंज नहीं हुए तो हमने तुमको वजाकुम नज़ीर वार्निंग भी दी है, देखो तुम्हारे बाल सफेद हो गए अभी मरना है, देखो तुम्हारे दर्द शुरू हो गए मरना है, देखो तुम्हारे यहाँ पोटे आ गए ग्रैंड चिल्ड्रन है, अभी तुम्हारा वक्त कब्र में जाने, कम से कम तुम सुधर जाते, फिर भी तुम नहीं बदले, तो फिर ये आयत है नंबर 6 पर, अल्लाह कहेंगे इक्सो, यू नो खसा अरब लोग किसको कहते थे, खसा का क्या माना, आई खसाल कल्ब, कुत्ते को भगाना है ना, ये बहुत खतरनाक लफ्ज है, कुत्ते को भगाते हैं ना, ठुप ऐसा करते हैं ना, कुत्ते को भगाते हैं जब वो आते हैं, ये लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल, इक्सो जाओ यहां जहन्नम में पड़े रहो, वला तुकल्लिमो मुझसे बात ना करो, ये मैंने किया अल्लाह के, इक्सो का आप डिक्शनरी में तर्जुमा देखिए, इतना अल्लाह गुस्से में उनको ढुटकार देंगे, अल्लाह बात कर रहा है डायरेक्टली, अल्लाह इनसे कह रहा है एक सौफिया वला तुकल्लिम, अब बात ही नहीं करना है, फॉर एवर एंड एवर जन्नम के दरवाजे बंद, खत्म बात, 6000 साल तक तो दुआ कबूल नहीं हुई, अब पड़े रहो। इसलिए भाई अल्लाह क्या कहते हैं कुरान में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो इंसान कहेगा एक दुनिया ऐसी 10 दुनिया के बराबर सोना में अल्लाह तुम्हें दे दूं अजाब से बचा ले, तो अल्लाह क्या कह रहे हैं तीसरे सिपारे में, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे गोल नहीं चाहिए, मेरे पास तो बहुत है, मुझे तो कलमा चाहिए था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, अगर तू वो लेकर आता ना तो आज सब तेरे लिए आसान था, सब आसान, जा जन्नत में खाओ पियो मजे करो फॉर एवर जन्नत में, लेकिन तू वो कलमा लेकर नहीं आया, और यही कलमा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को कहा था, ये कलमा पढ़ लो मेरे मेरे चचा, खाली कलमा पढ़ लो, मैं कयामत में तुम्हारा छुटकारा करवा दूंगा, लेकिन नहीं पढ़ा उन्होंने भी, तो अल्लाह के नबी रोते थे भाई रोते थे, अल्लाह ने क्या कहा, इन्नका ला तहदी, मेरे नबी ईमान तुम नहीं दे सकते, अल्लाह ईमान देगा जिसको चाहेगा, वो नबी को लुक आफ्टर करने वाले चचा को भी अल्लाह ने ईमान नहीं दिया, मुझे और आपको, हमने तो नबी को लुक आफ्टर नहीं किया, हमने तो खिलाया नहीं पिलाया नहीं, घर में रख, उन्होंने तो घर में रखा खिलाया पिलाया, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता ईमान देता है, अल्लाह ने बगैर मांगे मुझे और आपको ईमान दिया, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, मेरी बात समझ आती है, फिर भी इंसान कदर नहीं करता, ईमान के तकाजों को पूरा नहीं करता, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं यहां एक सौफिया वला तुकल्लिमो, पड़े रहो मुझसे बात न करो, इन्नहु कान फरीकुम, उस वक्त में देखो अल्लाह क्या कहेगा इन लोगों को कि मैं तुम्हें अजाब क्यों दे रहा हूं जहन्नम का फॉरएवर, इसलिए कि मेरे सहाबा मेरे ताबईन मेरे नेक बंदे उनका तुम दुनिया में मजाक करते थे, कभी मिसवाक का मजाक, कभी दाढ़ी का मजाक किया तुमने, कभी कुरान का मजाक किया तुमने, कुरान को जलाया, कभी क्या और कभी क्या और कभी इस्लाम का, कभी अजान का, कभी फुला, तुमने मेरे नेक बंदों को सताया दुनिया में, और तो मेरे नेक बंदों ने सबर किया, तो उनके सबर के ऊपर आज मैं उन्हें माफ कर देता हूं, जन्नत में भेज देता हूं, लेकिन अल्लाह उसको आगे कह रहे हैं ना, क्योंकि मेरे नेक बंदे क्या दुआ करते थे, रब्बना मन्ना फ़ग़फ़िर लना
वरहमना वंत खैर रहमीन, वो दुआ करते थे दुनिया में और अल्लाह के नबी की कमर पर ओझरी तुमने डाली, फिर जोर जोर से खिलखिलाकर हंस रहे थे, मेरे नबी के साहबा को तुमने सताया, जलाया, काटा उनकी उंगलियों को, उन्हें शहीद किया। दुनिया में कितने मुसलमानों पर जुल्म किया जाए, बोल जय श्री राम, नहीं तो मारते थे। आज इंडिया में देखो मोमिन की मजाक, बोल जय श्री राम नहीं तो मारूंगा, वो बेचारे को जबरदस्ती मार मार कर खत्म कर दे। कभी तो उंगली काटते बोल जय श्री राम, फिर दूसरी उंगली काटते हैं, कैसा जुल्म करते हैं। कयामत के दिन अल्लाह कहेगा वत्तखज तुम हम सिखरिया, तुमने तो मेरे दीन को मेरे नेक लोगों के साथ मजाक किया। सिखरी के माना क्या है, जोर जोर से हंसना, अरे देख लेके कैसा है, देखे कैसे चलता है, देख कैसा है। ए अल्लाह के नबी के पास तो चप्पल भी नहीं है, मकान भी नहीं है, हमारे पास तो पैसे है, ये कहते थे ना अल्लाह के नबी साहबा को कहते थे, कपड़े तो है नहीं इनके पास, कैसे इनके ऊपर नबूवत आ गई। फतखतुम सिखरिया हत्ता अंसौकुम दिखरी, उनके मजाक में तुम लगे रहे और तुम मुझे भूल गए, अल्लाह को याद नहीं किया तुमने। वकुंतुम मिनहुम तदहकून, और तुम उस पर हंसते रहे, तुम उनका मजाक करते रहे। आज इन लोगों को, इन ईमान वालों को, जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू, उनके सबर करने पर मैं आज उनको बदला दूंगा। हा इन्नहुम हुमुल फाइजून, ये जन्नत में जाएंगे, ये कामयाब। फाइज का माना है कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। अब अल्लाह फिर पूछ रहा है, चलो बतलाओ, काल कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, गिनती करो, अल्लाह उनका गिनती करो, चलो काउंटिंग, हाउ मेनी इयर्स यू स्टे इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कितना साल रहा बताओ। सब कहे कालू लबिस्ना यौमन औ बाद यौम, उसकी मौत हुई 7 साल में, 70 ईयर्स में, 80 ईयर्स में, 90 ईयर्स में, लेकिन वो क्या कहेगा, अजाब को देखकर एक दिन रहे हम तो दुनिया में। लबिस्ना यौमन औ बाद यौम, जाहिरी बात है कि दुनिया का 50,000 साल का एक दिन होगा कयामत का। कुरान की आयत में ना खमसून अल्फ सना, लेकिन यहां पर अजीब तफसीर की गई हाशिए में, फरमाया ये लोग कहते थे ना वयस्ताजिलूनका बिल अजाब, वयस्ताजिलूनका, ऐ नबी तुम अजाब 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 कर लाओ, अजाब जल्दी करो, क्यों नहीं आता अजाब। बात मेरी सुन रही है, अल्लाह के नबी को क्या कहते, अजाब लाओ ना, क्यों नहीं लाते तुम, मालूम होता है कोई अजाब आने वाला नहीं है। फरमाया एक दिन में अजाब आ गया, उनके लिए तो एक ही दिन है ना, इसलिए अल्लाह कितना ठहरे दुनिया में तो एक दिन, देखा ना कितना जल्दी अजाब आ गया। उसका माना हुआ दुनिया की जिंदगी एक दिन के बराबर होगी, वो कयामत में कहेंगे। और आगे क्या कहा है, औ बाद यौम, या 3/4 डे के बराबर हुआ। फस अलिल आदीन, इन फरिश्तों को पूछो ना, जन्नत में क्या कहेंगे, फरिश्तों को पूछो। और बाज तफसीर में क्या है, दुनिया की जिंदगी नहीं कबर की जिंदगी, कितना सोए तुम कबर में बताओ। अब कॉल लबिस्तुम इल्ला कलीला, अल्लाह कहेंगे तुम दुनिया में बहुत थोड़ा। अरे भाई हमेशा की जिंदगी उसके मुकाबले में 50, 60, 70 साल तो कुछ भी नहीं है, इज नथिंग फॉर एवर एंड एवर लाइफ, एंड ही इज ओनली 50, 60, 70 ईयर्स। लव कुंतुम तअलमून, अगर तुम्हें पता हो तो देख लो। इसलिए वो क्या कहते थे, अल्लाह ये तूने दुनिया बनाई है ना, ये तेरे खेल के लिए है। इंसान बच्चों को हम खिलौना ला देते हैं ना, टॉयज ला देते हैं, खेलते रहते हैं, तो वो क्या कहते थे, ये दुनिया अल्लाह ने खेल के लिए बनाई है। अल्लाह को और कोई खेल मिला ही नहीं, दुनिया ही मिली। उसका जवाब अल्लाह दे रहे आगे, अब वासिफ तुम, क्या तुम सोचते हो, क्या तुम ऐसा गुमान करते हो, क्या तर्जुमा करें, क्या तुम समझते हो, अन्नमा खलकनाकुम अबसा, हमने तुमको यूजलेस और बेकार पैदा किया। वी क्रिएटेड यू यूजलेस, देयर वाज नो रीजन, नो हिकमत बिहाइंड, वअन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, क्या तुम्हें पता नहीं तुमको मरकर हमारे पास आना है, अल्लाह को जवाब देना है। कितना इंसान को मारेंगे, कत्ल करें, कितना करेंगे, अल्लाह के पास तो जाना है, दोबारा जिंदा होना है। फताल अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल
کری. اللہ بہت بڑا سچا بادشاہ ہے, اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں. وہ عرش عظیم کا رب ہے. میں ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا کہ عرش کا کیا معنی ہے, عرش عجیب بات. فرمایا عرش اللہ کی وہ جگہ ہے جو میرے اور آپ کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی, میرے اور آپ کے سمجھ میں. اس لیے کہ انسان کا نیچر کیا ہے, کوئی چیز پہلے دیکھتا ہے, دیکھ کر پھر اس کو بیان کرتا اور اندازہ لگاتا ہے کتنی بڑی ہے. ہم نے تو عرش کو تو دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے اندازہ لگا سکتا ہے. صرف اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں اللہ کا تخت, لیکن کیسا تخت ہے اس کو کہتے ہیں عرش. رب العرش العظیم الکریم. ومن يدعو مع الله الهًا آخر, جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں, لا برہان لا, برہان کی بھی تفسیر میں نے دیکھی, ڈکشنری بھی کبھی کبھی دیکھنی چاہیے قرآن کی لغات میں. قرآن لغات القرآن بہت جلدوں میں ہے, ہندوستان کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا طاہر پتنی نے لکھی ہے, پتنہ کے رہنے والے تھے, بہت جلدوں میں اس میں ہر ہر لفظ کی تفسیر لکھی ہے. اس میں لکھا ہے برہان کا معنی ہے کوئی دنیا کی دلیل اس کو توڑی نہ سکے. جیسے بھائی دین میں سورج ہو, دین میں سورج نکلے, تم ہزاروں دلیل پیش کرو کہ سورج کی روشنی نہیں ہے, پھر بھی تمہیں یقین کرنا پڑے گا کہ ہے, تمہاری دلائل اس کے سامنے چل ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ بالکل روشن کی طرح تمہارے سامنے ہے. سمجھ بات. تو کیا کہہ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا جائز ہے. There is no problem if you worship beside Allah anyone's. There is no, Allah did not mention like this. ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي, اب تمہیں اللہ کے حساب دینا ہے. سمجھ آتی ہے بات, حساب دینا ہے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, اور disbelievers جو ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے, چونکہ ایمان نہیں لائے. ایمان لائے تو کامیاب ہے. اللہ نے اس سورت کو شروع کیا قد افلح المؤمنون, یا آخر میں سورت کو اینڈ کیا لا یفلح الکافرون. یہ کام کریں گے تو مومن کامیاب ہوں گے, یہ کام نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. یہ سورت کو شروع کیا اور اینڈ کیا. وَقُرْ رَبِّكَ فِرْ, اور کون سی دعا مانگتے رہو, اللہ کو کہا, اللہ کے نبی نے اللہ کو کہا, اللہ نے کہا اپنے نبی کو, رَبِّكَ فِرْ وَرْحَمْ وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر. عجیب, یہ آخری جو ہے نا, یہ ایک دو تین چار اور پانچ آیت ہے. افحسب تم انما خلقناکم, سے لے کر یہاں تک. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیتوں کو, ایک مرد کو جنات تھا, بہت پریشان کرتا تھا. عبداللہ بن مسعود نے یہ بات لکھی صاحب روح المعانی نے تفسیر میں, اور امام ترمذی نے ترمذی شریف میں لکھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اس کو کان میں دم کیا, فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو. تو وہ جنات جل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو پوچھا عبداللہ مسعود کیا پڑھا تم نے, کہا سورہ مؤمنون کی آخری پانچ آیتیں میں نے اس کو دم کی کان میں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, لو قارع قرع موقنا لزال الجبال, اگر پڑھنے والا ان پانچ آیت کو یقین کے ساتھ پڑھے پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ بھی ہٹ جائے گا. کیا فرمایا, بات امام ترمذی نے نقل کی ہے اور صاحب روح المعانی نے. تو یہ زبردست آیات ہے, اس کو پڑھ کر پڑھنا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے, تاکہ شیطان سے انسان کی کیا ہوتی ہے, حفاظت ہوتی ہے. جب اللہ کے نبی نے کہا پہاڑ بھی ہٹ سکتا ہے ان آیتوں سے, تو دنیا کے شیطان کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اس سورت میں جو باتیں بیان کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ آج سورۃ المؤمنون ختم ہوگی, کب انشاءاللہ آنے کے بعد حج, سفر حج کے بعد سورۃ النور کو پڑھیں گے. سورہ نور کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان ہے کہ اس میں بہت سارے احکام عورتوں کے بیان کیے گئے ہیں. اور خاص طور پر عورتوں کو پڑھانا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس میں بہت سارے احکام ہیں گھر کے اندر میں کس طرح رہنا چاہیے بچوں کو، فلاں کو فلاں کو. انشاءاللہ آنے کے بعد انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سورت کی پوری کرنے کو قبول فرمائے. تو آج سنڈے کو ہے، 10 ہے نا، 10 مئی کو الحمدللہ سورت المؤمنون ختم ہوئی. اب دعا بھی کرو کہ میری تفسیر بھی لکھ کر آ جائیں، کوشش تو چالو ہے. سورہ فاتحہ تو انشاءاللہ قریباً پوری ہو رہی ہے، آگے سورہ بقرہ بھی لکھ کر آ جائے تو ایک جلد کم سے کم آ جائے. الحمدللہ سورہ فاتحہ تو کافی، سورہ فاتحہ کے 7 گھنٹے ہم نے کیے تھے 19 سال 20 سال پہلے، تو وہ تو ماشاءاللہ. میں خود جب دیکھ رہا تھا آج وہ لکھ کر آئی ہے نا، میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے یہ کہاں بیان کی سب، یا کیا بیان ہوئے ہیں. اگر یہ پوری تفسیر چھپ کر آ جائے گی نا تو انشاءاللہ بہت کام ہوگا علماء کرام کا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حمید یا بدیع السماوات والارض، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على حبيبه سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا بڑا عمل نہیں ہے کہ تیرے سامنے اس کو بیان کر کے ہم اپنی مغفرت مانگ سکیں، لیکن یہ بات یقین ہے، ضروری ہے، یہ بات یقیناً ہے کہ ہم تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تیرا قرآن، جتنی ذات تیری بڑی ہے اتنا قرآن تیرا بڑا ہے. اے اللہ اس قرآن کے صدقے ہمیں معاف کر دے، اس قرآن کے صدقے ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت کر دے. اے اللہ ہماری نسلوں میں اللہ قرآن کی تعلیم اور حافظ قرآن پیدا فرما. اے اللہ عالم قرآن پیدا فرما، عامل قرآن پیدا فرما، داعی قرآن پیدا فرما، عاشق قرآن پیدا فرما. یا اللہ علماء صلحہ پیدا فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، بیماریوں کو دور فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم.